नमस्कार भारत, 26 अप्रैल दिन बुधवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। सीरिया और इराक में कुर्द लड़ाकों पर तुर्की के हमले को लेकर अमेरिका ने जताई चिंता, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा जारी रहेगी कार्रवाई। सुकमा के नक्सली हमले में मारे गए सीआरपीएफ के एक जवान के पिता का छलका दर्द।
ये तो असफलता है ना, ये तो हमेशा होते रहेगा। सरकार को चाहिए कि ठंडे दिमाग से उसको बैठ के बातचीत कर।
सुनवाएंगे गौरक्षकों की सोच और उनके कामकाज की पड़ताल करती एक खास रिपोर्ट।
इल्जाम है कि मेरी कम्युनिटी गौकशी में शामिल है, तो मुझे ही आगे बढ़ के उसको धोना पड़ेगा।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। अमेरिका ने सीरिया और इराक में कुर्द लड़ाकों को निशाना बनाकर किए गए तुर्की के हवाई हमलों को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा है कि इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे गठबंधन ने इन हवाई हमलों को मंजूरी नहीं दी थी। प्रवक्ता ने कहा है कि इन हमलों में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में सहयोग कर रहे लड़ाकों की मौत हुई है। तुर्की की सेना का कहना है कि उसके हवाई हमलों में करीब 70 कुर्द लड़ाके मारे गए हैं। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रिचेप तैयप एर्दोगान ने कहा है कि जब तक अंतिम आतंकवादी का सफाया नहीं होगा, तब तक उत्तरी इराक और सीरिया में तुर्की सेना के हमले जारी रहेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने की योजना को बड़ा झटका लगा है। ये उनके चुनावी अभियान का अहम वादा भी था। ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो इस सप्ताह पेश किए जाने वाले खर्च विधेयक में इस दीवार के लिए अरबों डॉलर की वित्तीय मदद नहीं मांगेंगे। डेमोक्रेट सांसदों के ऐसे किसी कदम को रोकने का ऐलान करने के बाद ट्रंप ने ये संकेत दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि दीवार बनकर रहेगी। उन्होंने कहा कि वो दीवार के लिए पैसा मिलने का इंतजार करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप प्रशासन का 100वां दिन है और अमरीकी कांग्रेस के संघीय खर्च को मंजूरी न देने की स्थिति में ट्रंप सरकार का कामकाज ठप हो सकता है। वहीं व्हाइट हाउस के प्रवक्ता सीन स्पाइसर का कहना है कि ट्रंप दीवार बनाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, उनकी प्राथमिकताएं नहीं बदली हैं, दीवार बनकर रहेगी। मानव तस्करी और M13 जैसे गैंगों, ड्रग्स और अवैध प्रवासियों को देश में घुसने से रोकना अहम है। देश की सुरक्षा के लिए दीवार बनाना राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा का मुद्दा है। जैसे जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, हमने अपनी प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट कर दी हैं और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप की प्राथमिकताएं भी नहीं बदली हैं। ये थे व्हाइट हाउस के प्रवक्ता सीन स्पाइसर के शब्द। अमेरिका के एक संघीय जज ने राष्ट्रपति ट्रंप के उस आदेश को रोक दिया है जिसके तहत प्रवासियों को वापस भेजने या हिरासत में लेने से इनकार करने वाले शहरों और कस्बों के लिए संघीय वित्तीय मदद रोकी जानी थी। जज विलियम ओ हेनरिक ने जनवरी में पारित किए गए राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर समूचे देश में रोक लगा दी है। ट्रंप के इस आदेश के तहत अमरीकी प्रवासन अधिकारियों के साथ सहयोग न करने वाली नगर परिषदों को संघीय सरकार से मिलने वाले पैसों पर रोक लगाई जा सकती थी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने इसराइल यात्रा पर आए जर्मनी के विदेश मंत्री सिगमार गैब्रियल के साथ मुलाकात रद्द कर दी है। जर्मन विदेश मंत्री ने इसराइली सैन्य बलों पर फलस्तीनियों पर अत्याचार करने के आरोप लगाने वाले समूह के साथ मुलाकात रद्द करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री इसराइली सैन्य बलों पर आरोप लगाने वालों से मिलने वाले लोगों से मुलाकात नहीं करने की नीति पर चलते हैं। जर्मन विदेश मंत्री ने कहा, मुझे इसका बहुत दुख है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि हम इसराइल की अंदरूनी राजनीति में फुटबॉल नहीं बन सकते हैं। उनसे कहीं और मिलने का मौका फिर आएगा। मैं इसे एक परेशानी की तरह नहीं देखता हूं। दक्षिण कोरिया का कहना है कि अमरीकी सैन्य बलों ने देश के दक्षिणी हिस्से में उन्नत मिजाइल रोधी प्रणाली स्थापित करनी शुरू कर दी है। उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों के खतरे के मद्देनजर अमेरिका बेहद उन्नत मिसाइल रोधी प्रणाली को दक्षिण कोरिया में तैनात कर रहा है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह रक्षा प्रणाली इस साल पूरी तरह स्थापित कर दी जाएगी। चीन ने इस प्रणाली को लगाए जाने का विरोध किया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत, आप सुन रहे हैं रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर भी लाइव। आज नमस्कार भारत में बात होगी छत्तीसगढ़ के सुकमा की, जहां सोमवार को माओवादियों के हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान मारे गए थे। बीते कुछ वर्षों से सुकमा में सुरक्षा बलों को क्यों नुकसान उठाना पड़ रहा है, हम सुनवाएंगे इसे लेकर एक खास रिपोर्ट। बात गौरक्षकों की भी होगी, लेकिन शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। तुर्की ने उत्तरी सीरिया और उत्तरी इराक में कुर्द लड़ाकों को निशाना बनाकर कई हवाई हमले किए हैं। तुर्की की सेना के मुताबिक इन हमलों में 70 के करीब कुर्द लड़ाके मारे गए हैं। अमरीका ने इन हमलों पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि उसने इनकी मंजूरी नहीं दी थी। वहीं तुर्की का कहना है कि अंतिम लड़ाके के सफाए तक हमले जारी रहेंगे। अधिक ब्यौरा दे रहे हैं दिलनवाज पाशा।
अमरीका ने सीरिया और इराक में तुर्की के हवाई हमलों में कुर्द लड़ाकों की मौत पर गहरी चिंता जाहिर की है। अमरीका समर्थित कुर्द लड़ाकों के समूह YPG का कहना है कि उनके ठिकानों पर कई हमले हुए हैं। कुर्द लड़ाकों का ये समूह इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रहा है। तुर्की YPG को प्रतिबंधित कुर्द अलगाववादियों से संबंधित मानता है। इराकी कुर्द लड़ाकों के समूह पशमरगा को भी इन हमलों में नुकसान होने की खबर है। तुर्की के संबंध इस समूह से बेहतर हैं। इराकी सरकार ने अपने क्षेत्र में हुए तुर्की के हवाई हमलों की निंदा की है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान ने हवाई हमलों का बचाव किया है। उन्होंने समाचार सेवा रॉयटर्स से कहा, अगर हम नाकाम हुए तो वो तुर्की पर स्पष्ट खतरा और चुनौती पेश करते रहेंगे। मच्छरों को मारने के लिए हमें तालाब सुखाना ही होगा, इसलिए ही हम ये ठोस कदम उठा रहे हैं। हमने इस अभियान के बारे में अपने अमरीकी सहयोगियों और रूसी सहयोगियों को जानकारी दी थी और हम उत्तरी इराक के प्रशासन से भी जानकारी साझा कर रहे हैं। जब तक अंतिम आतंकवादी नहीं मारे जाएंगे, हम लड़ाई जारी रखेंगे। वहीं अमरीकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा है कि अमरीका उत्तरी सीरिया और उत्तरी इराक में आज हुए तुर्की के हवाई हमलों को लेकर चिंतित है। उनका कहना है कि ये हमले अमरीका और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ गठित व्यापक गठबंधन से समन्वय के बिना किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि अमरीका ने अपनी चिंताएं तुर्की की सरकार से जाहिर की हैं। ब्रिटेन स्थित सीरिया पर नजर रखने वाले समूह द सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि मंगलवार सुबह किए गए हमलों में उत्तरी सीरिया के हसाके प्रांत में कुर्द ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमलों में मीडिया सेंटर और रेडियो स्टेशन को नुकसान हुआ है। उत्तरी इराक में सीरियाई सीमा के नजदीक सिंजर में भी कई हवाई हमले हुए हैं। सीरियाई कुर्दों के राजनीतिक संगठन PYD के प्रतिनिधि डॉक्टर एलन सेमो ने तुर्की के तर्कों को नकारा है। उन्होंने BBC से कहा,
This is nonsense argument. Sinjar is a far, far away.
ये तर्क बकवास है। सिंजर बहुत बहुत दूर है। आप तुर्की सीमा से 50 मील दूर की बात कर रहे हैं और हमलों के ये तर्क बेकार हैं। दूसरे देश में किए गए ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। इराकी सरकार के प्रवक्ता साद अल हादिसी ने कहा है कि इराकी सरकार अपने क्षेत्र में तुर्की के लड़ाकू विमानों के हमलों को खारिज करती है और उनकी आलोचना करती है। वहीं तुर्की के हवाई हमलों में कितने कुर्द लड़ाके मारे गए हैं, ये संख्या अभी स्पष्ट नहीं है।
तुर्की का हमला और अमरीका चिंतित, रिपोर्ट सुना रहे थे दिलनवाज पाशा।
खबर सच है अगर BBC पर है।
रुख भारत का करते हैं। बात छत्तीसगढ़ के सुकमा की, जहां सोमवार को हुए नक्सली हमले में मारे गए CRPF के जवानों में से 6 बिहार के थे। इनमें से एक थे सौरभ कुमार, जो पटना के दानापुर इलाके के रहने वाले थे। उनका शव कल शाम दानापुर पहुंचा। बेटे की मौत पर सौरभ के पिता का दर्द छलक उठा। उन्होंने सरकार से शिकवा भी किया। क्या है उनकी शिकायत, सुनिए मनीष शांडिले की इस रिपोर्ट में।
पटना के दानापुर कैंट एरिया के कमलेश कुमार 29 मार्च को अपने सैनिक बेटे सौरभ कुमार को वापस ड्यूटी पर भेजने रेलवे स्टेशन तक आए थे। होली की छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौटते बेटे को वह अंतिम बार ट्रेन पर बिठा रहे हैं, ऐसी आशंका उन्हें बिल्कुल नहीं थी। सोमवार को छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में 26 साल के सौरभ कुमार भी मारे गए हैं। वे बिहार सरकार के कर्मचारी कमलेश कुमार के 3 बेटों में सबसे बड़े थे। सौरभ ने 12वीं तक की पढ़ाई की थी और वे 2011 में CRPF में भर्ती हुए थे। सेना या अर्धसैनिक बल में जाने वाले अपने परिवार के वे पहले शख्स थे और उनके पिता के मुताबिक उन्हें CRPF जवान बनने का जुनून था।
उसका एक पैशन था। यहाँ पे उसके बहुत सारे दोस्त थे जो यहाँ पर आगे ग्राउंड है, उसमें दौड़ते उड़ते थे। 5-6 लड़के थे, सबकी नौकरी हो चुकी थी। कोई BSF में, तो कोई CISF वगैरह में हो गई थी, इसकी नहीं हुई थी। तो इनका था कि नहीं, हम भी CRPF ही जाएंगे। उसका दोस्त भी बोलता था कि नहीं उसमें नहीं जाओ, CISF में चले जाओ, इस सब में चले जाओ, तो नहीं हम CRPF में जाते, हम भी मना किया था कि मत जा और हायर स्टडी करो, तो नहीं हम उसमें जाएंगे ही जाएंगे।
कमलेश अपने बेटे को खोने के बाद भी कल अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए घर आने वाले हर एक से मिल रहे थे। मीडिया कर्मी बारी बारी से आ रहे थे, इसके बावजूद वे सभी से अपने बेटे की बातों को साझा कर रहे थे। कल के मुठभेड़ की खबर सौरभ की पत्नी प्रीति कुमारी को समाचार चैनल से हुई थी। प्रीति की शादी 2014 में सौरभ से हुई थी। उनके 7 महीने के बेटे का नाम प्रीतम है। घर के लोग गमगीन थे, कई बेसुध थे, तो पड़ोसी उनके घर पर जरूरी इंतजाम में लगे थे। पड़ोसी निकिता सिन्हा ने सौरभ को कुछ इस तरह याद किया।
बहुत सीधा लड़का था, बहुत सीधा बच्चा, इतना अच्छा से बात करता था, आंटी आंटी करते, उसकी याद हमें हमेशा ही रहेगा वो बच्चे का।
कमलेश सोमवार की घटना को सरकार की असफलता मानते हैं और चाहते हैं कि नक्सल समस्या का हल बातचीत से निकले।
ये तो असफलता है ना, ये तो हमेशा होते रहेगा, और सरकार को चाहिए कि ठंडे दिमाग से उसको बैठ के बातचीत करे, वहाँ लोकल जो नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनको बैठा के, गवर्नमेंट सब बैठा के, मिलिटेंट्स के नेता को बैठा करके उनको मुख्य धारा में लाएं, उनके बाल बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको हाथों हाथ काम दें, सब काम करने लगेगा तो नहीं ना नक्सल पैदा होगा।
सौरभ के घर आज सुबह से ही लोग पहुंच रहे थे और शाम होते होते सैकड़ों लोग उनके घर के आसपास जमा हो चुके थे। सौरभ का शव कल रात करीब 8:30 बजे उनके घर पहुंचा। सब पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों ने उनके सम्मान में नारे लगाए। मनीष शांडिल, BBC दानापुर।
सौरभ के परिजन सरकार को रणनीति बदलने की सलाह दे रहे हैं, आंकड़े भी कुछ ऐसा ही इशारा करते हैं। पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो जाहिर होता है कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में अधिकांश मौके पर सुरक्षा बलों को नुकसान उठाना पड़ा है। सुकमा जिला सुरक्षा बलों के लिए क्यों मुश्किल का सबब बना हुआ है, यही बता रहे हैं रायपुर से आलोक पुतल अपनी इस रिपोर्ट में।
ये कह पाना मुश्किल है कि सुकमा में सुरक्षा बलों की रणनीति कमजोर पड़ जाती है या माओवादी इस इलाके में ज्यादा मजबूत हैं। सुकमा जिला 3,33,000 हेक्टेयर से भी अधिक इलाके में फैला हुआ है, लेकिन इतने बड़े इस जिले की कुल आबादी केवल 2.5 लाख के आसपास है। जिले में कुल 3 कस्बे हैं, सुकमा, कोंटा और छिंदगढ़। इसके उलट इस जिले में 8 वन क्षेत्र हैं, यानी गांव और कस्बों की तुलना में जंगल कहीं अधिक फैला हुआ है। यही कारण है कि माओवादियों के लिए यह इलाका बेहद सुरक्षित माना जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह इसे माओवादियों का हेडक्वार्टर बताते रहे हैं और मंगलवार को उन्होंने सुकमा को लेकर अपनी राय कुछ यूं जाहिर की।
मैं मानता हूं कि सुकमा की लड़ाई इस नक्सली पूरे देश के आंदोलन की सबसे बड़ी लड़ाई है, और इस पूरे मामले में हमने भी तय किया कि उस इलाके में एक्टिविटी और बढ़ाई जाए, वो चाहे निर्माण कार्य हो, चाहे वहाँ के ऑपरेशन हो।
लेकिन विकास अब भी सुकमा से कोसों दूर है। हालत यह है कि सुकमा के जिला अस्पताल में प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं को भी दूसरे जिलों का रुख करना पड़ता है। जिला अस्पताल में न तो सिटी स्कैन की सुविधा है और न ही MRI की। अस्पताल में कुल जमा 1 X-ray मशीन है, लेकिन कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। जिले में सरकारी सुविधाओं की कमी और सरकार की अनुपस्थिति ने माओवादियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया, और शायद यही कारण है कि आज की तारीख में सुकमा को माओवादियों का आधार इलाका माना जाता है। पुलिस के दस्तावेजों को देखें तो पता चलता है कि देश में माओवादियों का सबसे मजबूत मिलिट्री बटालियन इसी इलाके में काम करता है। विशेष तौर से प्रशिक्षित अत्याधुनिक हथियारों वाले माओवादी इस मिलिट्री बटालियन की पहचान है। हालांकि राज्य के गृहमंत्री रामसेवक पैंकरा का कहना है कि अब सुकमा में स्थिति बदल रही है।
देखिए, उस क्षेत्र में जितने भी पुल पुलियों का निर्माण हो, चाहे रोड का निर्माण हो, हमारे पुलिस विभाग लगातार उनको सहयोग करती है, ठेकेदार को सहयोग करती है, जिसके कारण ही आज हम उस क्षेत्र में कामयाब हो रहे हैं। रोड बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, पुल पुलियों का निर्माण हो रहा है, उनको सुरक्षा मुहैया करा जा रही है, तो उसी का लाभ हमको मिल रहा है कि हम विकास की गति आगे बढ़ा रहे हैं।
लेकिन इस तरह के दावों के बाद भी माओवादी सुरक्षा बलों पर हमला करने से नहीं चूक रहे हैं, तो क्या इस इलाके में और अधिक सुरक्षा बल की जरूरत है? यही सवाल हमने छत्तीसगढ़ के पूर्व पुलिस महानिदेशक विश्वरंजन से पूछा।
मुझे नहीं लगता कि फोर्स की और ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है कि फोर्स को नक्सली तौर तरीकों का अध्ययन करना, नक्सली स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स का अध्ययन करना, उसके काउंटर मेजर्स खोजना और उसको इफेक्टिवली जमीन पर उतारना, अगर ये कर दिया तो नक्सलियों के पैर धीरे धीरे उखड़ सकते हैं।
सुरक्षा बल या राज्य सरकार में बैठे आला अधिकारियों के लिए इस तरह के सुझाव का कोई अर्थ है भी या नहीं, लेकिन यह तो तय है कि नक्सलियों के पैर उखाड़ने के लिए सरकार को सुकमा में कई स्तरों पर अभियान चलाने की जरूरत होगी, जिसकी अभी तो कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
आगे बढ़ते हैं। बाद भारत प्रशासित कश्मीर की, जहां तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने वाले समूहों में छात्राएं भी शामिल हो गई हैं। कई छात्राएं हाथ में पत्थर थामे नजर आ रही हैं। इस स्थिति ने सरकार और सुरक्षा बलों दोनों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसे लेकर हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने श्रीनगर में मौजूद BBC संवाददाता रियाज मसरूर से बात की और पूछा कि क्या घाटी में पहले भी कभी लड़कियां पत्थर चलाते हुए नजर आई हैं?
जी देखें, ये तो 21 साल में पहली बार हुआ है, क्योंकि 1990 में जब यहाँ पे चरमपंथ इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद 1996 में जब यहाँ पे एक सरकार गठित हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस की फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में, तो उसके एक साल बाद यहाँ पे स्टोन प्रोटेस्ट हुए थे। लेकिन पिछले 20 साल में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि लड़कियां जो है वो वर्दियां पहने हुए बाहर निकलेंगी, पथराव करेंगी या सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ियों पे अटैक करेंगी, तो ऐसा पहली बार देखने में मिला है।
छात्राएं भी अब सड़कों पर उतर आई हैं, तो किस तरह का संकेत युवाओं की तरफ से है ये?
जी देखें, यहां के जितने भी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटीज हैं उसमें 20 लाख छात्र और छात्राएं हैं, और जो कश्मीर वैली की जनसंख्या है वो 70 लाख है, और 70 लाख में कोई 60% जो जनसंख्या है वो 15 से 35 साल के बीच है। जो ये सभी युवा हैं वो ऐसे माहौल में पले बड़े हैं जो घुटन, फायरिंग और सिक्योरिटी सिचुएशन और इन सब से घिरी हुई है। तो पहले से ही जो है 20 साल से, जैसा आपको पता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट एक्टिविज्म या स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उस पर बैन है, तो कोई भी स्पार्क, जाहिर है यहाँ पे 9 अप्रैल को उपचुनाव हुए थे और उसके बाद जो हिंसा हुई और उसके बाद जो भी घटनाएं घटी उसपे एक जाहिर है प्रक्रिया आनी थी युवाओं की तरफ से, लेकिन युवाओं को सड़कों पे आने नहीं दिया गया, उनको रोका गया मार्चेस निकालने से, प्रदर्शन करने से। तो उसके बाद जो झड़पें हुई हैं स्कूल और कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के छात्रों, छात्राओं और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच, तो इससे एक बहुत ही गंभीर स्थिति जो है वो पैदा हो गई है, और यही वजह है कि यहाँ की मुख्यमंत्री भी चिंतित है और भारत सरकार भी चिंतित है। कई मीटिंग्स हो रही हैं, दिल्ली में भी मीटिंग्स हुई, मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जो है वो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जी से मिली, और बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है, क्योंकि कल ही श्रीनगर में भी एक मीटिंग हुई है जिसमें सिक्योरिटी एजेंसियों के सभी शाखाओं की मीटिंग की अध्यक्षता चीफ मिनिस्टर ने की है।
इस बैठक में युवाओं की काउंसलिंग की बात कही गई है,
यहाँ पे जिसमें आर्मी, CRPF, BSF, पुलिस, इंटेलिजेंस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, और बहुत ही बड़े पैमाने पे ये मीटिंग हुई है। इसमें मुख्यमंत्री का कंसर्न यही था कि भैया मरने मारने की नौबत ना आए, यानी अगर प्रदर्शन होते हैं तो अगर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से कोई रिएक्शन होता है तो उसमें कोई मारा ना जाए। दूसरा ये कि युवाओं की काउंसलिंग की जाए।
नमस्कार भारत में, वक्त ये जानने का है कि दिल्ली से छपे अखबारों की सुर्खियां क्या कह रही है। हमारे साथ ही दिलनवाज पाशा मौजूद है अखबारों के साथ। मैं देख रहा हूँ कि आप सारे अखबार पलट चुके हैं, क्या कह रही है सुर्खियां?
जी वात्सल्य, आज भी अखबारों में जो सुकमा में हमला हुआ और भारतीय अर्धसैनिक बल के जवानों ने जान गंवाई, उससे जुड़ी खबरें हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने एक तड़पती हुई बेटी की तस्वीर प्रकाशित की है जिसके पिता संजय कुमार जो ASI था उनका इस हमले में देहांत हुआ। द हिंदू ने एक पत्नी की तस्वीर प्रकाशित की है जो रो रही हैं, सौरभ कुमार जो जवान थे उनकी ये बीवी है। इसके अलावा और भी अखबार जो हैं,
जी मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर अखबारों में तस्वीरों के जरिए
नई दुनिया में जो तस्वीर छपी है बहुत बीभत्स तस्वीर है और शीर्षक भी उसका बहुत दिल दहलाने वाला है। अखबार लिखता है कि महिला नक्सलियों ने 6 जवानों के साथ की नृशंसता, गुप्तांग उनके काट दिए, अखबार का दावा है। और अखबार कहता है कि पहले भी इस तरीके की नृशंसता जवानों के शवों के साथ की जाती रही है। इसके अलावा शेर मोहम्मद एक जवान है जिन्होंने दावा किया है कि उन्होंने 5 नक्सलियों को गोली मारी, घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। इनकी कहानी कई अखबारों में छपी है। उनकी मां का कहना है कि मुझे नाज है अपने बेटे शेर पर, और पूरा गांव मेरठ, ये बुलंदशहर के रहने वाले हैं, वहां उनका पूरा गांव जो है उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहा है। इसके अलावा भारत सरकार इन हमलों का कैसे जवाब देगी, अखबारों ने ये बताने की कोशिश की है।
सरकार की रणनीति के बारे में
जी पंजाब केसरी लिखता है, राजनाथ की नक्सलियों को चेतावनी देंगे करारा जवाब।
हालांकि कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं रणनीतियों पर।
जी बिल्कुल सवाल उठ रहे हैं, बीबीसी की भी रिपोर्ट में सवाल उठ रहा था और हिंदुस्तान कह रहा है नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। तो इसके अलावा एक और खबर जिस पर आज दिन भर नजर रहेगी, दिल्ली के
एमसीडी चुनाव की।
जी जी बिल्कुल, दिल्ली के एमसीडी चुनावों का आज नतीजा आना है। पंजाब केसरी ने सट्टेबाजों के हवाले से बताया है कि भाजपा 206 से 209 सीटें जीत रही है, आप 28 से 30 और कांग्रेस 25 से 27 ये कयास हैं।
एग्जिट पोल में भी अलग अलग तस्वीरें आई हैं।
एग्जिट पोल में अलग अलग तस्वीरें आई थी, लेकिन एक बात सब में बिल्कुल एक जैसी थी, वो ये कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में।
जी दिलनवाज, लेकिन नतीजे किस तरह के आते हैं मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि वो अपडेट ले सकते हैं bbchindi.com पर आकर, वो सारी जानकारियां ले सकते हैं चुनाव के नतीजों से जुड़ी हुई।
जी बिल्कुल, इसके अलावा एक और खबर है, मालेगांव धमाकों में गिरफ्तार साध्वी प्रज्ञा को जमानत मिली है, कई साल बाद इनको जमानत मिली है। इसके अलावा एक और खबर है जो सभी अखबारों में है, सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा पर भ्रष्टाचार का मामला सीबीआई ने ही दर्ज किया है, ये कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है।
दिलनवाज मैं एक खबर का जिक्र करना चाहूंगा जो आपने रात में bbchindi.com के लिए तैयार की थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 छुट्टियां खत्म कर दी हैं, और ये कौन सी छुट्टियां हैं अगर हमारे श्रोता जानना चाहते हैं तो रुक कर सकते हैं bbchindi.com का।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
आगे बढ़ते हैं। भारत में पिछले 2 साल में गाय से जुड़ी खबरें अखबारों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। आखिर गोरक्षा में लगे ये गोरक्षक कौन है, उन्हें प्रेरणा कहां से मिलती है और क्या उन्हें भी डर लगता है? कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने, सुनिए उनकी ये खास रिपोर्ट।
दोपहर के 2 बजे पूर्वी दिल्ली के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में मुझे गोरक्षा पर सबक मिल रहे हैं। सबक देने वाले बड़ी शिद्दत से अपने आप को एक समर्पित गोरक्षक बताते हैं जो 10 साल पहले इस आंदोलन से जुड़े थे। हरियाणा के रहने वाले पवन पंडित अब दिल्ली में बस चुके हैं और करीब हर आधे घंटे पर इनके मोबाइल की घंटी बज उठती है और ये लोगों को गोरक्षा से जुड़ा ज्ञान देते हैं। सलाह देने के बाद पवन पंडित हमें बताते हैं,
इस नए भारत के प्रारूप में जब लोग बात करते हैं कि कई जगह पे गाय को रखने की जगह नहीं है इसलिए काटना सही है, तो क्या फ्यूचर में अगर लोगों के रहने की जगह नहीं होगी तो क्या उनको भी इसी तरीके से उनके लिए भी स्लॉटरिंग हाउस बनाए जाएंगे, क्या उनको भी काटा जाएगा?
भारत में इन दिनों कहीं गो हत्या रोकने पर प्रदर्शन हो रहे होते हैं, कहीं चुनावी वायदों में गोमांस पर प्रतिबंध की बात, और कहीं चुनाव जीतने पर बढ़िया गोमांस उपलब्ध कराने का भरोसा। इस बहस के बीच हिंसा भी हुई है और वो भी देश के कई हिस्सों में। 2015 में दादरी के रहने वाले अखलाक की जान गई, 2016 में ऊना में दलित युवकों की सरेआम पिटाई और 2017 के पहले हिस्से में अलवर जिले में पहलू खां को गाड़ी में गाय ले जाने पर जान गंवानी पड़ी। खुद प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मुख्यमंत्री और नेता गोरक्षा के नाम पर हिंसा के खिलाफ बोले हैं, लेकिन इसका प्रभाव कितना पड़ा है ये बड़ी बहस का मुद्दा है। पवन पंडित के दफ्तर से करीब 8 किलोमीटर दूर एक मंदिर की बगल वाली गौशाला में 3 व्यक्ति गायों को गोधन कहकर ही संबोधित कर रहे हैं। इनमें से एक राष्ट्र प्रकाश हैं, जो पेशे से कारोबारी हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की गोरक्षा इकाई के उत्तर भारत प्रमुख भी हैं। मैंने पूछा, कई मामलों में कथित गोरक्षकों ने हिंसा भी की है, उसे तो सही नहीं ठहरा सकते। राष्ट्र प्रकाश ने कहा,
जो गो तस्करी करने वाले लोग हैं वो अपराधी लोग हैं, वो लैस होकर आते हैं, वो पिस्टल भी लेके आते हैं, वो तलवार भी लेके आते हैं, वो पत्थर भी लेके आते हैं, जो भी गलत काम करता है। तो जब जनता उसको पकड़ती है फिर तो पहले तो पीटेगी उसको, अधमरा करेगी। अब कई बार ये भी होता है अधमरा करने में उससे आगे की स्थिति होती है, तो वो स्थिति ना हो। कई बार पुलिस अगर ठीक से कार्रवाई कर ले और पुलिस तुरंत एक्शन ले ले तो शायद ये स्थिति ना बने।
इस बीच कई राज्य सरकारों ने गो हत्या पर कानून सख्त किए हैं और कुछ राज्यों में बीफ के खिलाफ मुहिम भी चली है। अवैध बूचड़खानों और बिना लाइसेंस के मीट बेचने वालों पर लगाम कसी जाने का सिलसिला भी जारी है। सवाल ये भी है कि आखिर भारत में गोमाता आंदोलन का इतिहास कितना पुराना है और क्या इसकी कोई खास वजह रही है। मैंने बात की जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर DN झा से।
1882 में महर्षि दयानंद ने गौ रक्षिणी सभा की स्थापना की थी, उसके बाद ही ये
मूवमेंट चला, उनका पर्पस था कि जो हिंदुओं को गाय के बचाने के नाम पर एक साथ किया जाए, क्योंकि 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई थी तो उसमें हिंदू मुसलमान एक साथ लड़े थे और अंग्रेज चाहते थे कि इनको अलग किया जाए दोनों को। तो जब अलग होने लगे तो इन्होंने इसको दयानंद सरस्वती ने गाय को हिंदुओं का मसला बनाया। तो मतलब जो गौ माता का जो कंसेप्ट है वो तो 19वीं शताब्दी के आखिर का है।
हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और गो हत्या प्रतिबंध की मांग करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी की राय प्रोफेसर झा से अलग है। स्वामी संसद में गो हत्या के खिलाफ कानून के लिए प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश कर चुके हैं और चाहते हैं कानून सारे देश में लागू हो। सुब्रमण्यम स्वामी,
जब बहादुर शाह जफर मांग को बैठाया गया था दिल्ली के गद्दी में 1857 में, तो पहला कदम उन्होंने लिया कि गौ हत्या पर उन्होंने प्रतिबंध लगाए। हमारी जब संविधान बनी उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्नेंस के लिए एक अनिवार्य है, उसमें उन्होंने इसको इंक्लूड किया है। जहाँ तक ये सवाल है, कोई नई हिंदुत्व के आधार पर हम लोगों ने उठाया है जो पहले नहीं था, ऐसा नहीं है। ये प्राचीन काल से ये विषय होता था, हमें गांव की मान्यता थी। वो सिर्फ गांव के लिए नहीं थी, मयूर के लिए भी थी, पीकॉक, और उसको तो 1951 में ही उस पर प्रतिबंध लग गया था उसकी हत्या पर।
लेकिन प्रोफेसर डीएन झा इन दावों को खारिज करते हुए बताते हैं कि प्राचीन भारत में भी गोमांस खाने का रिवाज था और इतिहास में कहीं ये बात नहीं मिलती जब गो हत्या के लिए मृत्युदंड जैसे प्रावधान का प्रमाण मिले। वैसे पूछे जाने पर सुब्रमण्यम स्वामी भी हिंसा की निंदा करते हैं।
देखिए, पहले तो जो कानून अपने हाथ में लेते हैं वो तो अपराधी हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये ऐसे तबका को सख्त कार्रवाई करके दबाना चाहिए।
इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह के मामलों के बढ़ने से भारत में अल्पसंख्यक समुदाय में थोड़ा संशय बढ़ा सा जरूर दिखा है। इतिहासकार प्रोफेसर डीएन झा इस पूरे आंदोलन को अफसोसनाक कहते हुए खारिज करते हुए बताते हैं,
कोई भी डिवाइडेड जो सोसाइटी है उसमें सोशल जस्टिस का होना मुश्किल तो होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई जानबूझ के इनजस्टिस करे। तो ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। आप गाय को बचा सकते हैं, औरत को नहीं बचा सकते हैं। ये चीज़ जो है ये हम समझते हैं बिल्कुल गलत है, और इसको किसी आइडियोलॉजी से मतलब नहीं है। ये जितने हैं ये लोग, देखिए ये गाय को क्या बचाना चाहेंगे, ये क्या नेशनल लॉ लाएंगे।
हैरानी दिलदार हुसैन बेग जैसे मुसलमानों से भी मिलकर होती है। पुरानी दिल्ली के एक मंदिर की गौशाला में हर हफ्ते गोसेवा करते हैं, दिन में 5 बार नमाज भी पढ़ते हैं और गो हत्या रोकने के लिए एक मुस्लिम गोरक्षा दल भी बना चुके हैं। दिलदार हुसैन बेग,
हमारी बात से इत्तेफाक तो एक भी सदी भी नहीं रखते थे, लेकिन धीरे 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 करके हमारी तादाद थोड़ी बढ़ने लगी है। अब लोग पढ़ने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। मेरी कम्युनिटी के ऊपर इल्जाम है कि मेरी कम्युनिटी गौ कशी में शामिल है, तो मुझे ही आगे बढ़ के उसको धोना पड़ेगा। मैं सिर्फ गौ हत्या के खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि वो एक हमारे एक बड़े भाई, क्योंकि हमारे परिवार में जो हिंदू हमारा बड़ा भाई है, हम लोग छोटे भाई हैं, तो अगर हमारे किसी की आस्था को हमारे उसमें वो होता है तो हम लोग जो है उस चीज को त्याग कर सकते हैं।
इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि फिलहाल भारत में न सिर्फ गाय बल्कि गोरक्षक ट्रेंड करते दिख रहे हैं। लेकिन जिस बात पर ज्यादा गौर फरमाने की जरूरत है वो ये कि ये सब कितना सही है और कितना गलत। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
इस खास रिपोर्ट पर आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। और हम आपको बता दें कि आईपीएल में कल बारिश की वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच रद्द हो गया। दोनों टीमों को एक एक अंक मिला। वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन पहले प्रमुख समाचार एक बार फिर दिलनवाज पाशा से।
अमेरिका ने सीरिया और इराक में कुर्द लड़ाकों को निशाना बनाकर किए गए तुर्की के हवाई हमलों को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने की योजना को बड़ा झटका लगा है। यह उनके चुनावी अभियान का अहम वादा भी था। अमेरिका के एक संघीय जज ने राष्ट्रपति ट्रंप के उस आदेश को रोक दिया है जिसके तहत प्रवासियों को वापस भेजने या हिरासत में लेने से इनकार करने वाले शहरों और कस्बों के लिए वित्तीय मदद रोकी जानी थी। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी बदलती खबरों के लिए। तब तक आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।